शाबाश। अजान के चले, अभी आपको देखते हैं और बोले और कहाँ पे इसका मौका। जी आप इधर रुफिया जी,
जुम्मे को
जुम्मे के दिन
दिन
कसरत से
कसरतुल
दुरूद पढ़ना
शरीफ
चाहिए,
और
ठीक
लेके
है।
कोई भी जैसे अगर दुआ मांगनी स्पेशली तो उससे पहले बात
दुआ के
करनी
शुरू में आखिर में, जी बिल्कुल। और जी
और
आप
वैसे माँ के कहते हैं पता, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है
यानी
उस वक्त।
जब बहुत परेशान होती हैं तो उस वक्त पढ़ती हैं। जी
जी मुझे बहुत सुकून मिलता है उस वक्त।
अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई चीज़ किसी के जहन में? चलिए इंशाल्लाह ताला फिर इसी पे इंशाल्लाह हम थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं आज अल्लाह के हुक्म से। नहमतुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह सुबहाना ताला की जितनी तारीफ़ कर सके इंसान उसका हक़ अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो रब है, उसने तो हमें पैदा किया, वो तो हमारा खालिक और हमारा मालिक है। लेकिन अल्लाह सुबहान ताला के बाद दुनिया में जो हस्ती सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा मोहब्बत के लायक है, और हकीकत है कि उनसे मोहब्बत की गई और की जाती है और की जाती रहेगी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में जब हमें किसी से बहुत मोहब्बत होती है तो हम उसकी उस मोहब्बत के इजहार के लिए हाँ जी हम मोहब्बत के इजहार के लिए तारीफ़ करते हैं ना। जैसे आपको अपने बच्चे से प्यार है तो आप छोटे बच्चे को प्यार करते वक्त कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इसी तरह हर रिश्ते में मोहब्बत का इजहार फ़र्क होता है ना। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक ऐसी आयत नाजिल की हुई है कि जिसके बारे में आप और मैं ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमें अनगिनत इनामत दिए हैं, तोहफे दिए हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हमारे ऊपर, लेकिन किसी का एहसान नहीं जतलाया। जतलाने से मुराद ये कि उसको अल्लाह सुबहाना ताला ने हमारे सामने इस तरह नहीं पेश किया कि अच्छा मेरा ये एहसान मानो, लेकिन एक नेमत ऐसी है कि जिस पे अल्लाह ताला ने कहा है, और वो क्या है, लकत मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अलबत्ता तहकीक एहसान किया अल्लाह ने मोमिनों पर। कैसे? इस बास फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, जब भेजा उनमें से ही एक रसूल जो उन्हीं का हम जिन्स था, मुराद एक इंसान था, क्या करता था, यतलु अलैहिम आयातिही, जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता था, वयुज़क्कीहिम और उनका तज़किया करता था, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता था। सूरह आले इमरान की आयत 164 है। अगर आप इस पे गौर से देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को, आपके इंसानियत में भेजे जाने को अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एक एहसान कहा है। कभी आप और मैं इस पे गौर करें तो हकीकत में दिल बंद होने लगता है। मैं ये सोचती हूँ और आप भी मेरे साथ सोचेंगे तो आपका भी दिल घुटने लगेगा कि बिलफर्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस ना होते तो आज हम कहाँ होते हैं? कौन था जिसने जहालत के और शिर्क के अंधेरों में डूबी भी इंसानियत को हिदायत और रोशनी की तरफ ना भेजा? और मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ, आप और मैं तो होते ही ना, पूछें क्यों? बेटी होने की सज़ा में पैदा होते ही मार दिए गए होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औरतों पर जो एक ख़ास एहसान है वो क्या है कि उन्होंने तो जीने का हक दिलवाया। आप सब जानते हैं कि अरब लोग अपनी बेटियों को पैदा होने के बाद फौरन मार देते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये बेटी आर का जरिया है। तो वो तो अल्लाह के नबी सल्लम के जो मामले थे वो तो थे ही, लेकिन असल बात यह है कि आज मैं और आप देखें तो इंसानियत वाकई उन्हीं तालीमात को तरस रही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इंसानियत को दी। इस दुनिया में आपका जो आना था वो एक रहमत था। आपने कितना बड़ा चेंज पैदा किया जिसको आज की ज़ुबान में इनकलाब कह सकते हैं, रेवोल्यूशन कह सकते हैं, कि सिर्फ 22 साल और कुछ महीने के अरसे में वो अरब जो बिल्कुल बद्दू थे, यानी जिसको आज के दौर में आप कहें कि अनपढ़ थे, बिल्कुल मुहज़ब नहीं थे, अनसिविलाइज्ड थे, डिसेंट लोग नहीं थे, वैशी थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, बात बात पे झगड़े, बात बात में उनके ऊपर इतना कुछ होता था। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की तालीमात ने उनको दुनिया का इमाम बना दिया। और इमाम लफ्ज़ आज हमारे अंदर इतना इन नहीं है, तो अगर मैं बोल दूँ कि वर्ल्ड लीडर बना दिया, सुपर पावर बना दिया मुसलमानों को, ये टर्म्स तो हमने सुनी हुई है ना। वजह क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये सब कुछ था जिसका इसे एक आयत में तذکرہ। आज भी अगर इन उम्मत मुस्लिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे गौर व फिक्र करे, तो अल्लाह के हुक्म से आपके जो बताए हुए तरीके थे वो आज के दौर के मुसलमानों को भी वो सब इज़्ज़त अदा कर सकते हैं। और आप और मैं उस नबी की उम्मत है, आप सोचिए ज़रा, आपके मेरे लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को कई मुश्किलों में से गुजारा। आप देखिए कि नबी सल्लम से जो मोहब्बत है ना, उसका इजहार कैसे होगा। उसका इजहार होगा हम उन पर दुरूद पढ़ेंगे। दुरूद का लफ्ज़ कुरान पाक में जिस लफ्ज़ के साथ है वो सल्ले का लफ्ज़ है, और हम सब भी उर्दू में बोलते हैं सलातुस्सलाम, ऐसे ही है ना। तो आज इंशाल्लाह हम मुख्तसर सा देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ऐसे ही है जैसे आपकी तारीफ़ करना, आपकी कुर्बानियों का हक अदा करना, और कोशिश करना कि हम आज उनको एक अच्छा गुड वर्ड्स में रखें। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला उनको आला दर्जे दे चुका दे रहा है। मैं आप ये नहीं कह सकते कि मेरे आपके इस दुआ करने से नबी सल्लम के दर्जे बुलंद किए जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उम्मती होने का हक अदा हो सकता है। तो हम इस एक सीरीज़ में, बेसिकली एक ये पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह बाद में आपको मिलेगी, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। तो इसकी पिछली नशिस्त में हम इस बारे में बात कर चुके हैं डिटेल से कि पढ़ें क्यों दुरूद। तो आज आप सब जो नए साथी हैं उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो थे ही ऐसे, ही डिज़र्व्स, अल्लाह के नबी इस काबिल थे कि उनकी तारीफ़ें की जाए। और हमने आपकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट एंगल्स देखे थे। आज हम देखेंगे कि दुरूद शरीफ जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, एक पूरा दुरूद इब्राहिमी के नाम पे हम जानते हैं, इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, बस इतना लफ्ज़ भी एक पूरा दुरूद है। तो अल्लाह के नबी ने जब हमें हर चीज़ सिखाई है तो ये भी तो सिखाई होगी ना कि इसको कैसे पढ़े। मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ कि नमाज हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे नबी सल्लम ने पढ़ी और पढ़ के बताई और कह भी गए कि सल्लू कमार आई तुमोनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो, ऐसी है ना। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे कैसे, हम सब जानते हैं। पहले सुहाना कल्ला पढ़ते हैं, फिर हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, फिर कहीं से भी कुरान पाक का कुछ एक हिस्सा पढ़ के, जो भी नमाज का तरीका है, ठीक है। नमाज में हम दुरूद शरीफ कहाँ पढ़ते हैं, तशहुद में सलाम फेरने से पहले, जिसमें दुआएं मांगी जाती हैं उससे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा होगा कि हम दुरूद शरीफ खड़े होकर सूरत फातिहा के बाद पढ़ लें, कभी आपके जहन में भी नहीं आया होगा ना, हम सोच भी नहीं सकते। वजह इसलिए कि नबी सल्लम ने जब नमाज में बताया तो वहीं बताया, ऐसी है ना। तो इसे क्या पता चलता है कि कोई चीज़ देना लेकिन हाउ टू यूज़, ये भी नबी का ही काम होता है। जैसे आप देखिए ये माइक आपके सामने है, अब ये माइक है हमारे पास, लेकिन ये कौन सी तार हमने कहाँ लगाई, जहाँ इस कंपनी ने बता दिया उसी तरफ लगाते हैं ना। दुनिया का एक सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल, आप जो चीज़ ख़रीद के लाते हैं ना उसके साथ एक बुकलेट आती है और उसमें लिखा होता है हाउ टू यूज़ मी बिफोर, यानी रीड मी बिफोर यूज़, ऐसे ही है ना। तो नबी सल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में रोशनास करा दिया। तो यकीनन फिर उन्होंने अपने ऊपर दुरूद पढ़ने का भी तो कुछ बताया ही होगा ना। तो इंशाल्लाह आज चंद बातें, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, सिर्फ आपको मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ दुरूद शरीफ पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप पर मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, और वो क्या है, नमाज के आखिरी तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ना। अब हम आखिर में पढ़ते हैं ना, जैसे चौथी रकत है अगर तो चौथी में पढ़ते हैं, तीसरी रकत है मगरिब की नमाज की तो वो आखिरी हो जाती है। इसी तरह अगर दो फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं फजर की नमाज के या सुन्नतों के, तो हम दो में पढ़ते हैं, ठीक है, तिरमिज़ी की ये रिवायत मौजूद है कि नबी सल्लम पढ़ते थे। लेकिन एक चीज़ जिससे हमारे पाकिस्तान इंडिया के लोग आगाह नहीं है, मैंने जब भी मैंने खुद भी सच बात है जब हदीस पढ़ी उसके बाद हमने इसको शुरू किया, शुरू से हमारे जहनों में ये था कि सिर्फ आखिरी तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लम की नमाज का तरीका पढ़ा, इसमें दो तीन मशहूर किताबें हैं, नमाज नबवी में आप चेक कर सकते हैं, किताबुल सलात में चेक कर सकते हैं, और सबसे बढ़ के सही बुखारी तो सबके घरों में होगी अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसका जाकर किताबुल सलात खोल के पढ़ ले तो आपको ये चीज़ उस पर भी मिल जाएगी कि नबी सल्लम जैसे 2 रकत के बाद हम बैठते हैं ना, अमूमन हम क्या करते हैं, अत्तहियातुलिल्लाह पढ़ते हैं, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के फिर हम खड़े हो जाते हैं ना, उस मौके पे भी दुरूद तक जाना चाहिए। मेरी बात वाज़े? यानी जब आपने 3 फ़र्ज़ पढ़े मगरिब के तो 2 रकतों के बाद हम बैठते हैं ना, तो जब 2 रकतों में हम बैठे उसके बाद तो हमने अत्तहियातुलिल्लाह पढ़ा, फिर उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर उसके बाद अगर आपके इस वक्त है, फ़र्ज़ नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स गुनाह नहीं है, लेकिन नबी सल्लम से साबित है कि आप उसके बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ के फिर खड़े होते थे। ठीक है, तो ये एक मौका बन गया कि जिसमें आप कह सकते हैं कि पहली चीज़ कि हम तशहुद में बैठते हैं जब तो उस वक़्त पढ़ते हैं, तो इसको आप कॉमन रख लें, आखिरी तशहुद हो या कोई सा भी हो इसमें पढ़ना चाहिए। और इसमें बड़ा मारूफ दुरूद है जो हम सब जानते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, जिसमें हज़रत इब्राहिम का भी जिक्र आता है, और मैं अक्सर सोचती हूँ कि इब्राहिम का क्यों आता है, मूसा का क्यों नहीं आता, ईसा का क्यों नहीं आता। और माशाल्लाह जो अल्लाह ने कम से कम 313 रसूलों का तो यकीनी हतमी बताना, उनके क्यों नहीं आते। तो अब जब कुरान से ताल्लुक़ जुड़ा, सीखा सिखाया, और अभी रिसेंटली हमने कुरान पाक में फिर हज़रत इब्राहिम का जिक्र पढ़ा सूरत अल-अंबिया में, तो हकीकत है कि मैं आपको अपने लिए और आप अपने लिए इस क्राइटेरियन को रख लें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और उनकी हिजरतों और उनके अल्लाह की बात को सुन के फौरन मानने का यही नाम था। ऐसे ही है ना, जैसे आप देखिए कि आप यहाँ बैठी हैं और अगर आपकी कोई दोस्त आज इधर ना आई हो किसी वजह से या यहाँ से मूव हो गई, तो आप जब सारी सिस्टर्स पुरानी दोस्तें बैठती हैं तो उनको याद करते हैं और अच्छे लफ्ज़ों में करते हैं ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर आना इस बात की दलील है कि इब्राहिम ने जो ज़िंदगी बसर की वो क्वालिटी लाइफ थी। सूरत नहल में अल्लाह ताला कहते हैं कि इब्राहिम एक उम्मत है। सूरत बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं इस काला लहु रब्बुहु अस्लिम काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। उन्होंने हर हुक्म सुनकर आमन व सद्दकना, ठीक है अल्लाह जी हम ईमान ले आए और आपने सच कहा, हम इसकी तस्दीक करते हैं, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा। आप कहते हैं कि जो हम हज के मौके पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं ये किसकी बात है? जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ मिलकर अल्लाह का घर तामीर कर दिया था ना, तो उसके बाद कहा अल्लाह ताला मैंने तो अपना काम कर दिया, और आयत है कुरान में कि वरीना मना सिकना व तुब अलैना, अल्लाह ताला हमें तरीका भी सिखाइए कि अब इधर करना क्या है, और विजुअल करें, आरीना कहते हैं दिखाने को, जैसे ऑडियो होता तो कहते हैं कि अल्लाह ताला बता दीजिए, लेकिन उसमें ये बात करके क्या बता दिया अल्लाह ताला ने के तरीका क्या है। अब उस वक़्त अल्लाह ताला ने इब्राहिम को कहा था, कुबैस नाम की एक पहाड़ी थी, कहा उस पे खड़े हो जाएं और आप ऊंची आवाज़ से सारी इंसानियत को पुकारें कि आओ इस घर का हज करो। तो कहा कि अल्लाह ताला इस सब इस जंगल में इस बियाबान जगह में बे बिया जैसे कोई भी नहीं था, वीरान था बियाबान था, यहाँ कौन मेरी आवाज़ सुनेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप करके तो देखिए। और जब वाकई उन्होंने पुकार दी तो हदीस में आता है कि हर रूह ने, जिसमें आपकी मेरी भी रूह थी, हर उस रूह ने जिसके नसीब में हज है या उम्र है, उन्होंने उसके जवाब में कहा था, उसके जवाब में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा था। और उस कलबे को अल्लाह ताला ने आज हज का एक रिचुअल बना दिया कि हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकारे। आज मौजू हज़रत इब्राहिम नहीं है, लेकिन देखिए मैं और आप यहाँ बैठे क्यों हैं, हमने गाइडलाइन लेनी है, जिस तरह की जिंदगियाँ उनकी थी, जो अल्लाह ने उनको नेमतें दी उससे आज 1000 गुना ज़्यादा हमारे पास होंगी। रिसोर्सेज देख लीजिए, नेमतें देख लीजिए, माल देखिए, औलाद देखिए, रहन सहन देखिए, तो हमारे लिए उस्वा हसना क्या। और अल्लाह ने सूरह मुमतहिना में भी कहा कि तुम्हारे लिए इब्राहिम की ज़िंदगी में उस्वा है। वो इंशाल्लाह एक अलग मौजू है, किसी मौके पे आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मज़ीद तारुफ देंगे, लेकिन यहाँ हम नबी सल्लम की हस्ती पे ले आएँ तो नमाज का हिस्सा क्यों है इसकी हिकमत भी साथ साथ देखते जाते हैं। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह का पैगाम दिया ना, तो वो हालात ऐसे थे कि जिस वक़्त अल्लाह की बात कहना अपनों को दुश्मन बनाना था, सारा माहौल बदल चुका था, हालात बदल चुके थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन जो तौहीद सिखाता था, वहाँ बुत परस्ती आ चुकी थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, खुदा ना खास्ता हम में से कोई इसको सोचे कि हम सब मुसलमान हैं और अगली चंद नस्लों के बाद हमारी नस्लों में कोई बच्चा कह दे मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ, कितनी तकलीफ़ बात होगी। नबी सल्लम उस दौर में भेजे गए थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो रियल नस्ल थी ना, नस्ल दर नस्ल इतना दीन से दूर हुए कि खुद को मुशरिक कहने लगे, खुद मुशरिक ना भी कहें लेकिन उनके अकायद में शिरक आ चुका था। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा चैलेंज था अल्लाह के नबी के लिए, आप इमेजिन कीजिए। आज के दौर में भी अगर आपको थोड़ा सा मौका मिल जाए दीन की बात करने का, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज भी उम्मत मुस्लिमा दोबारा उसी किनारों पर चल रही है, अल्लाह हिदायत दे और हमें बचा कर रखे बुरे अंजाम से। लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि अल्लाह के नबी सल्लम पर नमाज के आखिरी तशहुद में दुरूद पढ़ना एक खिराजे तहसीन है, एक जिसको आज की ज़ुबान में आप कह दें कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, कि आपने जो किया इंसानियत के लिए, हम सिर्फ लफ्ज़ों में आपको अच्छे तरीके से उसका इजहार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। फिर उसके बाद देखिए कि एक दूसरा मौका, और वो क्या है, नमाज़े जनाजा की दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना मसनून है। ये मुस्नद शाफ़ी की रवायत है। अगर आज शायद ख़वातीन को इधर रहते हुए मौका नहीं मिलता नमाज़े जनाजा पढ़ने का, क्योंकि अमूमन मस्जिदों में होती है, मर्द पढ़ते हैं मर्द चले जाते हैं, लेकिन जो हज उमरा करके आए उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक नमाज के साथ बाज़ दफ़ा दो दो दफ़ा भी मौका मिल जाता है ना। तो चार तकबीरात होती हैं, मैयत को सामने लिटा कर उसके सामने जो खड़े होकर हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो पहली रकत के बाद जो दूसरी अल्लाहु अकबर होती है तो उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। इसकी क्या हिकमत है, बड़ी अहम बात है। मेरा दिल था कि मैं वाकई ना बताऊँ, उसकी हिकमतें भी तो बताऊँ ना। आप देखिए कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो क्या करते हैं अमूमन, अजान देते हैं, एक में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे कान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये किस चीज़ का ऐलान है कि इस दुनिया में अब आए हो ना, तो खालिक वो है और इंसानों में सबसे बड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हुक्म यही है कि बच्चे के कान में ये पहली आवाज़ जानी चाहिए, यानी पैदा होने के बाद एज सुन एज पॉसिबल जितनी भी जल्दी मुमकिन हो ये अजान दे दें। मुझे चंद दिन पहले भी किसी का सवाल आया था कि अगर ना दी और कुछ दिन गुजर जाए तो क्या फिर हम अजान दें, तो मैंने कहा बिल्कुल दे दें, पसंदीदा तो यही था कि फ़ौरन दी जाए, लेकिन नहीं दी है तो दे दीजिए। तो पैदा होते ही बच्चे को एक पैगाम मिलता है, और वो क्या, क्या अब तुमने इस दुनिया में आकर जिसको रहबर जिसको रहनुमा समझना है वो अल्लाह का प्यारा रसूल है। अब दुनिया से जा रहे हैं, नमाज़े जनाजा हो रही है, अब वो खुद नहीं सुन रहे, जो दुनिया से चला गया वो नहीं सुन रहा, लेकिन उसकी नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ के क्या बताया जा रहा है, एक किस्म की मोहर जब्त हो रही है कि तुम उम्मत मोहम्मदिया के फ़र्द थे, तुमने सारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लम के तरीक़ों पे चलने की कोशिश की है, अब तुम्हारी आखिरी रसूमात में भी दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, क़यामत के दिन अल्लाह का नबी तुम्हारी सिफारिश कर दे। यानी असल में ये एक सिफारिश होती है, लेकिन मैं इसको ऐसे सोचती हूँ जैसे दो ब्रैकेट्स होती हैं ना, एक इधर और एक इधर, पैदाइश पे भी अल्लाह के नबी का जिक्र और मौत के वक्त भी, तो फिर जो बीच के 40, 50, 60 साल थे वो किसके होंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। बहुत तकलीफ़ की बात करने लगी हूँ, हम इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा एक सिस्टर की परेशानी के हाय है बच्चे के कान में अजान नहीं दी, तब तो क्या होगा, कई लोग पूछें ये मुसलमान तो है अच्छा कुछ नहीं, ये रिचुअल्स हैं, ये सुन्नतें हैं, फ़र्ज़ नहीं है, करेंगे सवाब है, नहीं करेंगे गुनाह नहीं है, हाँ इनकार करेंगे तो गुनाह, बल्कि कुफर पे पहुंच जाएंगे जी मैं करता ही नहीं ऐसा, बट ये शुरू और आखिर इस बात की दलील है कि बीच की पूरी ज़िंदगी भी नबी सल्लम के नक्शे कदम पे चलना। لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین اسوہ حسنہ۔ اللہ کے نبیوں میں کیا سکھا کر گئے؟ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، میں آج درس کے موڈ میں نہیں ہوں، صرف آپ میرے ساتھ شامل ہوں، ہاتھ کھڑا کریں، میں جب کچھ پوچھوں پھر میں آپ کو موقع دوں گی، میں چپ رہوں گی، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا کر گئے۔ آف کورس سب سے پہلی چیز آپ کہیں گے ہمیں نماز سکھا کر کے، پھر دوسری چیز آپ کہیں گے ہمیں حج سکھا کر کے، پھر روزہ رکھنا سکھا کر کے۔ عموماً ہمارا کلچر جو ہے آج کا، مسلمانوں کا انڈو پاک کلچر، اس میں عموماً جب پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا کر کے، آپ کی تعلیمات کیا تھی، تو نماز، روزہ، حج، زکات۔ حالانکہ یہ تو بہت چھوٹا حصہ ہے نماز دن کا۔ دیکھیں نا، آپ نماز دن میں پڑھیں، کتنی بھی اچھی پڑھ لیں، پانچوں نمازوں میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 گھنٹے، بڑی مروت سے میں نے کہا، کل پرسوں کے درس میں میں نے 1 گھنٹہ کہا تھا، کیونکہ وہ یوتھ بیٹھی تھی، تو یوں تو 1 گھنٹے میں 5 پڑھ لیتی ہے، چلے بڑے لوگ ذرا آرام آرام سے پڑھتے ہوں گے، چلیے 2 گھنٹے بھی لگا لیے نماز میں، تو 22 گھنٹے میں کیا کرنا ہے؟ یہ کس کو بتا؟ یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف عبادات نہیں سکھائیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات، دین کے 4 بڑے حصے کر لیں، 5 نام بھی کریں نا، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اسوہ حسنہ کو انگلش میں کہوں گی تو ہمیں اپنا اپنا لگے گا، اور وہ ہے رول ماڈل، کیونکہ آج ہم عربی سے زیادہ انگلش اور اردو سے مانوس ہیں۔ ہاں، رول ماڈل، ہی واز اے رول ماڈل، جو انہوں نے کیا ہم نے کرنا ہے، جو نہیں کیا ہم نے بھی نہیں کرنا، جس سے منع کر دی وہ تو بالکل ہی نہیں کرنا، کوئی کچھ کر رہا تھا آپ چپ رہے تو اس کا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری طرح غلط کام کرتا دیکھ کر چپ نہیں رہتے تھے کہ لوگ مائنڈ کریں گے، لوگوں کا دل ٹوٹے گا، وہ پھر کہہ دیتے تھے کہ کرنے والے یہ کام ٹھیک نہیں تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے آپ کو زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ سکھایا، تو اس میں کیا کیا آئے گا؟ عبادات بھی آئیں گی، معاملات بھی آئیں گے، اس میں اخلاقیات بھی آئیں گے نا، اور اس میں پھر ہماری خوشی، غم، بچے کیسے پالیں، ایک عورت کیسے جیے، ایک مرد کی کیا ذمہ داری ہیں، مرد کا کیا فیلڈ کیا ہے، مرد کا دائرہ کار کیا ہے، عورت کا کیا ہے۔ آج آپ اگر دیکھیں تو امت مسلمہ عموماً، اور پھر تھوڑا سا اس کو تخصیص کے ساتھ کہوں، ربیع الاول کے مہینے میں بہت ایکٹیو ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں، میلاد کی محفلیں سجانے میں، اور جو کچھ بھی کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں محبت سے ہی ہوتی ہیں نا، کوئی غیر مسلم تو یہ نہیں کرتا نا، مسلم ہی کرے گا نا۔ بٹ کویسچن کیا ہے کہ جب ہم نماز میں 19-20 کے فرق پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو آپ دیکھیے لوگ الگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، بس آپ نماز میں ہاتھ یہاں باندھے ہیں کہ ذرا نیچے باندھے، اس کی بیس پہ 2 فرقے ہیں امت مسلمہ کے آج، کچھ کہتے ہیں پیٹ پہ باندھے، کچھ کہتے ہیں اوپر باندھے، کئی لوگوں نے مسجدیں الگ کر لیں، ہم اس مسجد میں نہیں جاتے جی، ادھر یہ ہوتا ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، ہم ان چیزوں پہ تو بہت بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہمیں لائف سٹائل جی کے دکھایا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کرتا، لیکن اس کے اوپر کیا؟ تو خلاصہ کیا نکلا پھر اس بات کا کہ میری آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں۔ بس آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، یا ایک دن نبی کے گھر میں، اردو کی ایک بک ہے، انگلش میں بھی ہے پروفٹ ایٹ ہوم، آپ اس بک کو ضرور پڑھیں، ایسے آپ کو لگے گا کہ اللہ کے نبی ایک لائیولی، ایک زندہ، ہنستے بولتے کردار ہے۔ بیویوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، خادموں کے ساتھ کیسے تھے، اس میں ایک بک بھی ہے رہبر کامل، الحمدللہ اس کی آڈیوز بھی موجود ہیں اگر آپ سننا چاہیں، 19 مختلف اینگل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے، ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ، اور اسی طرح جرنیل، اور آپ نے بڑے بڑے کام بھی کیے اور چھوٹے بھی کیے، مسجد میں اذان بھی دیتے تھے، 5 وقت کے امام بھی تھے، جرنیل بھی تھے، جنگوں میں جا کے کمانڈنگ کرتے تھے، اور گھر آتے تھے تو اپنی بیویوں کے ساتھ اڈا گونتے تھے، جوتا سی لیتے تھے، کھانا پکانے میں مدد کرتے تھے۔ آپ کہیں گے ہیں، اتنا بڑا بندہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے؟ دیکھیے چھوٹے کام کریں گے نا پھر بڑے ہوں گے آپ سے۔ آج ہم نے دین کا ایک حوا بنا دیا، اور دینداروں کا بھی حوا ہی آج ہمارے دلوں میں، फलां पीर साहब, फलां बुजुर्ग साहब, फलां दर्स वाले, वो तो ऐसे हैं। लोग एक ऐसा तसव्वुर बना लेते हैं कि जिसके बाद उस पर हम पूरे नहीं उतर सकते तो हम हो ही नहीं सकते। नबी सल्लम बहुत लाइवली इंसान थे, आपकी बीवी आपस में हंसी मजाक करती थी, आप उसमें खुश भी होते थे। हज़रत आयशा छोटी उम्र में थी, जब वो घर में होती, उनकी उम्र की लड़कियाँ आती, खेल रही होती, अल्लाह के नबी को आता दे के छुप जाती इधर उधर डर के, जैसे बच्चे का मम्मी और रवैया। तो आप उनको कहते, नहीं निकलो, जो तुम कर रही थी वो करती रहो। यानी कहने का मतलब यह कि आपने हमें डे टू डे लाइफ भी सिखाई है इस रबीउल अव्वल में। आजकल अभी रबीउल अव्वल के दिन चल रहे हैं ना, ये सिर्फ एक मोटिव है। ये ज़रूरी तो नहीं कि ये बात सिर्फ रबीउल अव्वल में करने की है, या रबीउल सानी में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। हम सब अपने लिए गोल बनाएं, मिक्स एंड मैच, मेरी क्या चीज़ नबी सल्लम से मिलती है और क्या नहीं मिलती। देखिए ना, दुपट्टे को भी मैच करते हैं शलवार से, तो जाके चार दुकानों पे दिखाते हैं ना, कभी सनलाइट में देखते हैं, कभी इसमें देखते हैं, अदर देखते हैं, जी ये है वो है इस तरह के। जब औरतें दुपट्टे लेती थी तो ये मसला होता था, आपने भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा ऐसी ना। और वो डायर जो दुपट्टा रंगता है वो कितनी दफ़ा शेड को चेक करता है, बस उसको जहन में रख ले, वो एक एक मिनट के बाद उसका रंग चेक करता है, गहरा है हल्का है। मैंने आपने नबी सल्लम की सीरत और आपके तरीके से अपने आप को मैच करना है। हमारे पास बेस्ट मॉडल है, वो जो चीज़ ज़रा सी फ़र्क लगती है बस ठीक कर लीजिए, हल्का है तो गहरा करा ले, गहरा था तो रंग काट के हल्का कर ले बस। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा आपकी ज़िंदगी में सुकून और ख़ुशी? यकीन कीजिए, इतना मसरूफ़ इंसान और इतना रिलैक्स रहने वाला इंसान हो ही नहीं सकता जब तक सुन्नत के आईने में ना हो। ठीक है, फिर आप देखिए कि आपकी माशाल्लाह चार बेटियां थी और चारों की शादियां की आपने, तो चले हम भी जाके फातिमा की शादी का किस्सा पढ़े, कैसे की होगी, और रुकैया की कैसे की होगी, और उम्मे कुलसुम की कैसे की होगी, और अपनी भी शादियां की वो पढ़ लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कि नबी सल्लम ने जब शादी की तो क्या वो आपके मेरे लिए रोल मॉडल नहीं थे? तब भी रोल मॉडल थे ना। देखिए ना, हिंदू जो है वो आग के गिर चक्कर लगाते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाकर कोई स्लीप के इर्द गिर्द जाकर कुछ करते हैं ना। शादी एक मजहबी फरीज है, इज़ अ रिचुअल। हम मुसलमान 10 चीज़ें कर लें, लेकिन जब तक मौलवी साहब निकाह ना पढ़ा दें, हम कोई बड़ा लिबरल से लिबरल बाप भी अपनी बेटी नहीं देगा किसी को। तो दैट मीन मैरिज इज़ अ रिलीजियस थिंग, इज़ इट ट्रू और नॉट? तो अब नबी सल्लम जैसे शादियां करते थे तो वही तरीका होगा ना। अब आप कहेंगे हाँ हाँ हम वो तो करेंगे, निकाह तो हम पढ़वाते हैं मौलवी साहब से, बट कोई और काम अगर हम ऐसा करें कि जो अल्लाह के नबी की तालीमात से फ़र्क हो तो गड़बड़ हो सकती है ना। आप कहते हैं नहीं वो तो हमारी खुशी होती है। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि देखिए, नमाज जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें, लेकिन हम खुशी के लिए इसमें थोड़ी देर धमाल भी डालना शुरू कर दें, एंड पे भंगड़ा डाल लें। आपको पता है कि सिख मज़हब में भंगड़ा डालना इबादत है? हमारी एक बड़ी अच्छी साथी है, तो वो इस्लाम पे आई इस मज़हब से, तो वो बताती थी, कहती थी ऐसे सुबह उठ के हम मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो कहती हम सब उस खड़े होकर पहले भंगड़ा डालते हैं, फिर कहती तुम लोग खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, हाथ धोते हो, तो कहती हम खाना रख के पहले भंगड़ा डालते हैं। रियली? क्योंकि उनका ये मज़हब है। अब आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि शादी में हम सुन्नत तो कर ही रहे हैं ना, देखे ना मौलवी साहब को तो बुलाया बेचारों को, और छोटा सा एक दर्स भी रखवा लिया है, दुआ भी करा ली उनसे, कुछ भी कराया, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो ऐसे ही है कि हम नमाज के इर्द गिर्द दो चार चीज़ें लगा लें तो क्या पता चला। हाँ, क्या अल्लाह के नबी शादी में खुश नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। क्या आपने लड़कियों को बोलने हंसने बोलने की, खुश होने की, अच्छे कपड़े पहनने की कोई गुंजाइश नहीं दी? बिल्कुल दिए। क्या अलग के एक औरत शादी अपनी शादी पे दुल्हन तैयार नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एक मर्द तैयार नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। आज हमने सीरत को इतना महदूद कर दिया कि हमारा तसव्वुर क्या आता है, अल्लाह के नबी सारा दिन मस्जिद में बैठ के दर्स देते रहते थे, सफ़ेद जोड़ा पहनते थे और एक लंबी सी दाढ़ी थी, और आपकी बीवियाँ मोटी चादरें बड़े दुपट्टे लेकर सारा दिन घर में बैठी रहती थी। ऐसा नहीं था, रियली दे वर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। आज लोगों ने एक सोच देकर उम्मत मुस्लिमा को शर्मिंदा कर दिया कि तुम्हारे नबी के तरीकों पे ज़िंदगी गुजरे अगर, तो तुम पहली बात है खुश नहीं रह सकते, दूसरी बात है तुम कामयाब नहीं हो सकते, तीसरी बात है तुम तरक्की के रास्ते में दुनिया से पीछे रह जाओगे। हालांकि इंसानियत गवाह है इस बात की, जब तक सहाबा कराम के बाद के लोगों ने नबी सल्लम के वे ऑफ लिविंग को अपनाए रखा, 1000 साल, 10 सदियाँ होती हैं। जैसे आपने, मैंने अभी तक 19 देखी है, हम सबको याद है 19th सेंचुरी का शुरू आखिर जो भी था। अब 20th सेंचुरी के हमने 17 साल देख लिए ना। आप ज़रा सोचिए कि आज 2017 है ना, तो आप ज़रा लगाइए सब 1017 आज से 1000 साल पीछे, कितना लंबा टाइम होगा। इस पूरे टाइम पीरियड में मुसलमान पूरी दुनिया में गालिब रहे। वजह क्या? क्योंकि उनका मरना और जीना नबी सल्लम के तरीक़ों पे था। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरत अल अराफ की, सूरत अल अनाम की आखिर की आयतें हैं। तो मैं इस पे इस बात को माइंड अप करती हूँ कि नमाज़े जनाजा के बाद या नमाज़े जनाजा में और अजान देनी बच्चे के कान में, इन दोनों में ये मुमासलत है कि इन बिटवीन दी लाइफ जो है ना, ये भी नबी सल्लम के तरीक़ों पे होगी। और ये बड़ी मज़े की ज़िंदगी है जो गुजारते हैं। कभी आप उनसे तो पूछिए कि असल खुशी क्या है और किस तरह की खुशी है। तो उसके बाद तीसरी चीज़ पे चलते हैं, नबी सल्लम पे दुरूद शरीफ कब पढ़ा जा सकता है? अजान सुनने के बाद दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना 10 रहमतों के हसूल का ज़रिया है। ये बात सही मुस्लिम की एक रिवायत से मिलती है। और आप चाहेंगे तो मैं आपको बाद में कुछ बुक्स के नाम रेकमेंड कर दूंगी, आप उसमें से जाके इनकी पूरी डिटेल हदीसें पढ़ सकते हैं। लेकिन अजान के बाद दुआ कबूल होती है, और दुआ से पहले जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो 10 रहमतें नाजिल होती हैं। अब ये क्यों है? देखिए, अजान क्या है? फारिग हो जाओ, हम सब किसी ना किसी काम में लगे होते हैं, इतने में आप देखते हैं अजान हो गई। और आजकल तो माशाल्लाह एक ही वजू से 4 के 5 नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं। कई दफ़ा पढ़ी हैं सर्दियों में, इधर फजर से लेके ईशा तक एक ही वजू के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए कि अजान एक किस्म का अलर्ट है, अलार्म है कि आप थोड़े से फारिग हो जाओ, तुम्हारे रब ने तुम्हें पुकारा है। जैसे टेलीफोन की बेल बजती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं ना, माँ का फ़ोन आया, बहन का आया, भाई का आया, शौहर का है, बच्चे का, हर एक को इंतज़ार लग जाता है ना। अजान इज़ अ फ़ोन कॉल, किसकी तरफ से? हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाह कहता है और ज़रा थोड़ी देर मेरे से भी तो बातें कर लो। आप इमेजिन तो करें कि जब आपके फ़ोन की बेल बजती है आपका दिल कैसे खिल जाता है। और बाज़ लोग तो ऐसे लगता है पहली बेल पे फ़ोन ना उठाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर सब्र कीजिए, नंबर आ गया, मिस हो गई तो आ जाएगी। अब तो वो भी नहीं रह गया कि पकड़ लो उधर से, नहीं तो इधर से करनी पड़ेगी, पैसे बढ़ेंगे। अमेरिका में आपको पता है कि कॉल सुनने या कॉल करें दोनों को पैसे बढ़ते हैं, समझ? यहाँ तो करने वाले को बढ़ते हैं ना, पूरे यूरोप में ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे हैं, बट अमेरिका में अगर आप फ़ोन सुनते हैं ना सेलफोन में, तो आपके उसके मिनट भी ज़ाया होते हैं। बहरहाल, अजान क्या है? अल्लाह की तरफ से कॉल है। आर यू फ्री टू टॉक टू मी? क्या तुम मुझसे बात करने के लिए फ्री हो? अब आपका दिल क्या करता है अमूमन? आप अपनी बहनों को क्या कहते हो कि फ़लाँ वक्त करना, बच्चे सो जाते हैं, और फ़लाँ वक्त करना भी मियाँ साहब नहीं आए होते, ऐसे ही होता है ना। हम क्या चाहते हैं जब किसी से बात करें? कि हम फारिग हों, रिलैक्स्ड हों। अजान इस बात की अलामत है कि चलो तुम्हें 15 मिनट दिए जा रहे हैं, तुम इस दौरान अपने काम समेट लो, तो जब मेरे पास आओगे ना तो फिर तुम्हारा दिल दिमाग खाली हो। बात समझ गए? अब उसके बीच में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन का पढ़ना क्या लुत्फ़ देता है, आप ज़रा सोचें। और 10 रहमतें, एक रहमत उतर जाए ना तो हमारी ज़िंदगी के गुनाह अल्लाह ताला छुपा ले, हमारी बीमारियां दूर हो जाएं, हमारे गम दूर हो जाएं। और अगर आपने रहमत समझना ना क्या है, तो बाहर जाके देखिएगा, एक दिन बर्फ़ नहीं पड़ती तो काली हो जाती है, पाँव के निशान ग्रे मेल्ट हो गई, आप सब जानते हैं। कुछ कहीं बर्फ़ है कहीं कुछ है, वो मज़ा नहीं आता। सो गए, अगले दिन सुबह उठे, फिर क्या देखा? आज सुबह उठे थे तो क्या था? सारी जगह बाहर वाइट, और आज तो दरख्त भी सफ़ेद है। ये रहमत है। हम सब के नामे माल में गंदगियाँ होती हैं, कमी बेशी, काले नीले पीले रंग बिरंगे गुनाह। एक अल्लाह की रहमत की बारिश होगी या एक बर्फ़ का छींटा पड़ेगा, हम सब के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह छुपा लेता है। तो हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि मालिक तो मेरे ऊपर अपनी रहमत कर। और आज के बाद आप जब भी ये काम करें, इंशाल्लाह अजान तो हम सबके घरों में होती है, अजान सुनिए, पहले से अगर तैयार थे बैठ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें, और फील करें कि अब अल्लाह के नबी बीच में आ गए हैं। किस बात में? अल्लाह से किसने जोड़ा? नबी ने जोड़ा। तो इन फीलिंग्स के साथ जब आप अल्लाह अकबर कहकर खड़े होंगे, मुझे बताइए वो नमाज आम नमाज से फ़र्क होगी कि नहीं? फ़र्क होगी, और थोड़ी सी प्रैक्टिस है। देखिए हम 15 मिनट लगाते हैं ना, फिर आधा लग जाएगा, आधा घंटा। आप 5 दफ़ा दिन में इस तरीके से अल्लाह से बातें करके तो आए। कभी ऐसा हुआ कि आप फ़ोन पे तो कुछ ना करें, जल्दी जल्दी बंद कर दें, और फ़ोन बंद करके फिर अपनी बहन या भाई दोस्त या जिससे भी बात करें तो उससे बातें शुरू हो जाए। हम कब बातें करते हैं अपनों से? जब कनेक्शन मिला होता है। नमाज में कनेक्शन मिला होता है, कॉल मिली होती है। अच्छा हमारा हाल पता क्या है? नमाज जल्दी जल्दी और उसके बाद लंबी दुआ। कई लोगों को मैं देखा नमाज फटाफट अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, बाद में 5-10 मिनट लगा के हाथ खड़े करते। मुझे ऐसे ही लगता है कि किसने फ़ोन बंद करके अब बातें शुरू कर दी हैं। नमाज में दुआएं मांगी है, तशहुद में आप आधा घंटा दुआएं मांगे फिर सलाम फेरें, और ख़ास तौर पर जब आप नफिल नमाजों में, जब आप अकेले में, दूसरों को ना मुश्किल में डालें। अल्लाह के नबी दूसरों के साथ नमाज़ पढ़ते थे बड़ी मुख्तसर, और ख़ास तौर पर अगर पीछे बच्चों वालियाँ पढ़ रही होती तो किसी के रोने की आवाज़ आती बच्चे की तो आप वहीं छोड़ देते। ठीक है, तो आपने मैंने इंशाल्लाह इसके बाद प्रैक्टिस करनी है आज से कि हम थोड़ा सा फारिग हों, और यकीन करें अल्लाह ने सच कहा कि ये बहुत मुश्किल है सिवाय उनके जिन पे अल्लाह आसान कर दे, इल्लल खाशीन। खुशू आता है ना तो नमाज आसान हो जाती है। बहरहाल, और ये प्रैक्टिकल काम हम सब कर सकते हैं। अब आप देखें ना, अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी, नमाज के तशहुद में, फिर नमाज जनाजा में। अब नमाज जनाजा का मौका हमेशा नहीं मिलता, नमाज का मौका है। अब ये जो अजान के बाद है, दिन में 5 बार आपको ये मौका मिल गया दुरूद पढ़ने का, पढ़िए, और जितने दिल से पढ़ेंगे आप यकीन करें कि अल्लाह के हुक्म से आपको उससे फ़ायदा होगा। उसके बाद चौथी चीज़ जिस मौके पे आपने खुद ही सिखाया हमें, और वो क्या है कि जब नबी सल्लम की कब्र मुबारक पर जाएं, वहाँ इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो जामे सगीर की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है कि जो नबी सल्लम को बताता है कि आप पर दुरूद पढ़ा गया। यानी आप कह लीजिए कि जब आपकी कब्र मुबारक पर जाएं, रोज़े पे जाएं, मदीना मुनव्वरा, अल्लाह ताला आपको मुझे हम सब को लेकर जाए, और जब वहाँ जाएं तो फिर आप दिल भर के दुरूद पढ़िए। और जो वहाँ कैफियत होती है, आप में से बाय द वे कौन कौन जा चुके हैं हज पे? चले, जो गए हैं अल्लाह ताला उनको दोबारा, और जो नहीं गए अल्लाह ताला उनको ज़रूर लेकर जाए। उस वक़्त जो कैफियत होती है, यकीन करें बस बीच में एक दीवार ही है ना, दिल करता है ये चादर, ये हटे पर्दा, और एक नज़र अल्लाह के नबी की देख लो, हैं किधर थे कैसे। लेकिन ये मोहब्बत की बातें हैं, ये बातें जो है ये किसी के कहने सुनने की नहीं है। ये दुआ करें कि अल्लाह हमें अपनी भी और अपने नबी की भी मोहब्बत है। और याद रखिए कि माँ अपने बच्चे को मोहब्बत करना सिखाती है नबी से, अपने छोटे छोटे बच्चों को अभी से सिखाएं, फिर उनका दिल करेगा कि हम भी मक्का जाएं और मदीना जाएं। ख़ास तौर पे अगर कभी उनको लेकर जा रहे हैं उमरे पे, तो पहले उनको सीरत पढ़वाएं, नबी सल्लम के किस्से सुनाएं, फिर इंशाल्लाह उनका दिल आपसे जुड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग, जुमे को नबी सल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ये भी जामे सगीर की रिवायत है, यानी जुमे का दिन कोई भी वक्त में बस कसरत से पढ़िए। और मैंने अरब सिस्टर्स को देखा है, वो अपने बच्चे को डांटती भी है ना, कोई गलत काम कर रहा है ना, या अब्दुल्ला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, यानी उनका एक अंदाज़ किसी को तंबीह करने का भी यही है। तो जुमे के दिन उठते बैठते कोई ख़ास तरीका नहीं है, कोई ख़ास मौका नहीं है, कोई ख़ास वक्त नहीं है, छोटा पढ़ना चाहे तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये मुकम्मल दुरूद है अपनी जगह। पढ़ना चाहे तो नमाज का पूरा पढ़ लें, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी बुक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी दुरूद शरीफ के मसाइल, तो उसमें मुझे लगता है 18 से 20 किस्म के मुख्तलिफ दुरूद हैं, आप वो बुक हासिल कर लें। उसका लिंक भी है, आप में से कोई लेना चाहे PDF का, उसका मैं आपको भी दिलवा सकती हूँ, आप लोग उसमें से पढ़िए। वैरायटी से मोहब्बत होती है ना, जो मसनून दुरूद जो वाकई नबी सल्लम की ही ज़ुबान से निकले थे उसको पढ़ेंगे तो आपको फिर लोगों के बनाए हुए दुरूद में वो मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए कि अगली चीज़ क्या है, जब भी दुआ मांगे रात दिन में कभी भी करें, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ कोई भी कर सकते हैं, सूरह फातिहा पढ़ लें, सुबहान रब सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही, कोई भी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर नबी सल्लम पर दुरूद पढ़ें। और बहुत ही बेहतर है कि जब पूरी नव दुआ कर ले उसके बाद पढ़े। बाज़ रिवायत में यहाँ तक आता है कि दुरूद शरीफ जो है ना, ये दुआ के पर है, और ये भी जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आप उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। देखिए, हर वक्त हम फॉर्मल दुआ नहीं मांग सकते, अब दिन रात चलते फिरते दिल में वैसी बड़ी दुआएं हैं, तो क्या अब हर दुआ से पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप बड़े दिल से कोई भी दुआ करते हैं, बस आप देखिए कि रोज़े की हालत में है, इफ्तारी का वक्त आ गया, अब उस वक्त दुआएं हो रही हैं ना, बैठे हम, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर दुआएं मांग लें, दिल चाहे मौका मिले दुआएं पे पढ़ लीजिए, ठीक है? ये क्यों है? देखिए, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए नबी, हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। नबी सल्लम की औलादे नरीना थी, यानी आपके बेटे थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह चाहते थे कि नबी की नस्ल से बेटा कोई ना आगे आए ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे अभी बात की ज़रूरत नहीं, ख़त्म नबूवत की जो बात है। तो आप देखिए कि जैसे इब्राहिम का बेटा इस्माइल नबी बने ना, इसी तरह आप देखते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे याहिया अलैहिस्सलाम नबी बने ना, बहुत सारे याकूब के तो 12 बेटे थे, यूसुफ थे, उनमें मशहूर थे सारे। क्या ये मुमकिन नहीं था कि नबी सल्लम का भी बेटा होता? लेकिन चूँकि नबी सल्लम आखिरी नबी थे, इसलिए आपके सारे बच्चे दुनिया में ही अल्लाह के पास चले गए। आपकी ज़िंदगी में 3 बेटे अल्लाह ने आपको दिए, यके बाद दीगरे, बाज़ ने 4 जो कहा है वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक ही बेटे के 2 नाम थे, तैयब और ताहिर, इसी तरह कासिम, फिर इब्राहिम। तो आपके बेटे बच्चे जो दुनिया से जब जाते थे, तो कुफार ने एक बात मशहूर कर दी, नऊज़ बिल्ला, आप सुनेंगे तो आपको भी दुख होगा, आपका नाम क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नाम सुने दिल में कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप ही ने फरमाया कि मेरा नाम सुने। अभी ये भी इंशाल्लाह हम बात करते हैं इस पे, एक और मौका ये भी। तो अल्लाह के नबी सल्लम को मोहम्मद की बजाय उन्होंने अबतर कहना शुरू कर दिया, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। और अबतर किसको कहते हैं? जड़कटा। पंजाबी में आपने गाली सुनी है अबतर नखत्तर, कहते हैं जिसकी कोई नस्ल ना बचे, ये बहुत बड़ी गाली है पंजाबी में। अल्लाह के नबी को कहने ही ये लग गए कि इसकी नस्ल नहीं आगे चलनी। अब अल्लाह के नबी का दिल दुखी हुआ, आपने सुना भी वह सूरह कौसर नाजिल हुई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बी का वनहर, ठीक है? लेकिन उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को ये तसल्लियाँ दी थी कि वह रफ़ान अल्लाह का जिक्र, और सूरत दोहा की तफसीर सुन लीजिए, सूरत अलम नशरक सुन लीजिए, सूरत कलम सुन लीजिए, ये सारी सूरतें नबी सल्लम से मुतल्लिक हैं। सूरत बय्यिना तो पूरी की पूरी आप ही के मौजू पे है। तो क्या पता चला कि वरफ़ान अला का ज़िक्र, आप हैरान होंगे इस बात पे, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस हस्ती का नाम लिया जाता है वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके हमारे इस नॉर्वे में पिछले साल का मैंने पढ़े थे, अब तो अभी आएंगे इस साल के तो आएंगे, ये जो गुजरे ना इससे पिछले पढ़े थे, उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों के नामों को जब जमा किया, तो होता है ना कॉमन नेम कौन सा है जो सबसे ज़्यादा हो, तो आप कहते कौन सा आया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ये हर जगह है हमारे नामों के साथ, अक्सर बच्चों के नामों के साथ, बड़ों के, मोहम्मद असलम, मोहम्मद असगर, मोहम्मद अफजल, है ना? तो ये नाम सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो एक और एंगल आप समझें, और आप चाहें तो वो ऑनलाइन से भी देख सकते हैं, मलेशिया से कहते हैं कि शुरू होता है अजान का वक्त, फजर वहाँ होती है, थोड़ा सा आगे जाते जाए सूरज आगे आगे जाता जाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और उससे बाद दुबई, यूएई में, जब समझें कि यूएई से आगे जाता है ना फजर का वक्त, उधर हुई तो इधर शुरू, इधर शुरू तो आगे शुरू, पर पूरा पहिया घूमता है। जब आगे आके यूरोप तक पहुंचते हैं तो मलेशिया में कह लीजिए कि जोहर हो जाती है, राउंड द क्लॉक जिसको आप कहेंगे 24/7, इस ग्लोब पे नबी सल्लम का नाम आता है। और हर अजान में क्या है? अल्लाह के नबी के नाम, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलल्लाह। और अगर हर जगह मुसलमान इस तरह अजान सुनकर बाद में ज़रूर शरीफ पढ़ें, कौन है दुनिया में कि इतने गुन कोई गाए उसके? आप गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड को जाकर देख लीजिए कितने को फेमस लोग दुनिया में गुजरे हैं और उनके कितना कुछ नाम लिया जाता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी शान है। तो क्या पता चला जो मेरे आपके इसमें अब सीखने की बात है? ज़िंदगी में तो तकलीफ़ें आई हैं, वो एक अलग बहस है, वो तो रोने वाला टॉपिक है। ये दीन किस मुश्किल से उन्होंने पहुँचाया, ये तो मक्की और मदनी दौर को जाके खुलासे में सुन और पढ़ लीजिए, तो आपको मुझे इस दीन की वो कदर हो जाएगी जो अपने सोने चांदी की भी नहीं है। पत्थर खाकर, जुदाइयाँ सहकर, हिजरतें करके, कुर्बानियाँ दे देकर ये दीन लिया। बड़ा आसान था, वो तो कहते थे थोड़ी हमारी मान लो, थोड़ी तुम हम तुम्हारी मान लेंगे, तुम हमारे बुतों को एक दिन पूज लो, हम तुम्हारे रब को दूसरे दिन पूज लेंगे। कहा ये तो नहीं होगा। कहा अच्छा चलो एक दिन का सौदा नहीं करते, तो तुम एक दिन पूज दो तो हम एक हफ्ता तुम्हारे रब को पूजेंगे। ऑप्शंस तो बड़ी प्यारी हैं। हाँ, हर दौर में कुफर ने इस्लाम के साथ इसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, लेकिन आप सब जानते हैं कुल या युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। इस्लाम थोड़े से भी कुफर को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अब अगला जुमला गौर से सुनिएगा, कुफर बहुत सारे इस्लाम को बर्दाश्त कर लेता है। कैसे? मिसाल है, आपके सामने दो गिलास हैं, एक में जमजम है, आधा गिलास खाली आधा भरा हुआ, दूसरे गिलास में कीचड़ वाला पानी है। अब एक पाक है एक नापाक है ना। जमजम का एक कतरा, क्या आप आधा जमजम का गिलास कीचड़ वाले में डाल दें, उसको क्या फर्क पड़ना है, ले लेगा ना। पहले भी कीचड़ था, अब भी कीचड़ ही है, लेकिन जमजम के उस ग्लास में आप एक कतरा कीचड़ का डालें तो वो जमजम जमजम रहेगा, कोई पिएगा? बस जमजम है इस्लाम, और गैर इस्लामी हर चीज़ कीचड़ है। और अल्लाह कहते ला यस्तविल खबीस व तय्यब। इस्लाम दूसरी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता, दूसरे बहुत खुशी से इस्लाम की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो बहरहाल हम सब के लिए इसमें खुशी की बात है। फिर इसके बाद नेक्स्ट थिंग, कब दुरूशरी पढ़ा जाए। अभी हम सिस्टर्स को और आप में से जो माशाल्लाह बहुत सोशलाइजिंग करते हैं, बहुत पार्टीज़ में दावतों में दोस्तों को मिलते जुलते हैं, बैठते हैं ना, जैसे आज भी हम सब बैठे हैं ना, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी मजलिस में जहाँ भी जाके बंदा बैठे, कीलो काल होती है, बातचीत होती है, तो हर मजलिस में दुरूद शरीफ पढ़ना मसनून है। क्योंकि वो मजलिसें जिनमें दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए वो कल अल्लाह ताला के हाँ बबाल का ज़रिया बनेगी। ये तिरमिज़ी की रिवायत का खुलासा है। तो अब क्या मसलन, कब मिलते हैं हम सारे, सहेलियाँ मिली, चाय पे टी पार्टी है, और बच्चों की को खुशी है, शादी है, हर शादी के दिन हर फंक्शन से पहले शुरू में माइक पे आके पढ़िए दुरूद शरीफ, फिर एंड पे भी पढ़ लें। मैंने तो देखा लोग नमाज के लिए नहीं उठते हैं, दुख की बात है। आप कहें ज़रा जाके माइक पे के दुल्हन आ गई सब, ज़रा सारे हाल वाले दुरूद शरीफ पढ़ें, लोग ये भी नहीं पढ़ेंगे, गेटअप ही नहीं है, माहौल ही नहीं है। तो आज से आप ये काम मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, बस प्यार से मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद सुबह और शाम, नबी सल्लम ने फरमाया कि हर सुबह शाम 10 मरतबा इतना कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, दैट्स इट, चार लफ्ज़ हैं। अगर कोई सुबह भी पढ़ ले और शाम को भी पढ़ ले तो क़्यामत के दिन मैं उसकी शिफात करूँगा। आप सब तो पढ़ते होंगे ना अल्लाह के हुक्म से, जो नहीं पढ़ते उनको भी बताइए। और रोज़ सुबह पढ़ते, और फिर मैं सोचती हूँ इतना आसान इतना छोटा, नबी के नाम पे आज क्या कुछ मुश्किलात करते हैं, बाद हज़ारों रुपया लगा कर दावत पकाते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं नबी की मोहब्बत में, लेकिन इतना आसान है ये जुमला। पढ़िए, आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उससे अल्लाह के हुक्म से हमें उम्मीद है कि नबी सल्लम की शिफात नसीब होगी। फिर उसके बाद नबी सल्लम पर दुरूद शरीफ कब पढ़ें, जब भी कोई खुतबा वाज दर्स तालीम ताल्लुम खुतबा निकाह, जब भी इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं उस वक्त, फिर इसी तरह से आप कुछ लिखने बैठे, पढ़ने बैठे, टेस्ट की तैयारी करने बैठे, खाना पकाने, अब मैं आपको ये अपने तौर से टिप्स बता रही हूँ, हर नेकी के काम के आगाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वजह क्या है, देखिए आपने भी ऊपर सुना ना कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 रहमतें, तो जब रहमत आई तो रहमत के साथ बरकत आएगी, तो जब बरकत आएगी तो कामों में आसानी होगी हर काम से पहले। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब नबी सल्लम का नाम लिया जाए, एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की सीढ़ी पे पांव रख रहे थे, और आपने आमतौर पे तो आप सीढ़ी चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर कहते थे, लेकिन उस दिन आपने क्या कहा, आमीन। پھر دوسری سیڑھی کے وقت بھی یہی کہا، پھر تیسری پہ بھی کہا، تو صحابہ جو تھے وہ کوئی کام بھی آپ کو اگر ان یوزول کرتا دیکھتے تھے تو سوال کرتے تھے کیسا کیوں ہے، کیا حکم بدل گیا؟ تو آپ نے فرمایا حکم نہیں بدلا، اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی نے میرا نام سنا، یعنی میرے پاس کہتے ہیں جبرائیل آئے تھے، انہوں نے تین باتیں کی ہیں اور مجھے کہا آپ بھی آمین کہہ دیں، پہلی چیز وہ ہے جس پہ کسی انسان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس میں اتنی نیکیاں نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور دوسری میں آپ نے کیا کہا کہ جس کے پاس بوڑھے ماں باپ ہوں، ایک ہے یا دو ہے، اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ واجب کرا لے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور تیسرے میں کیا کہا کہ جس کے سامنے میرا نام پڑھا جائے تو وہ اگر مجھ پہ درود نہ پڑھے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یعنی لفظ لعنت کیا ہے، میں اس کا اپوزٹ بول رہی ہوں کیونکہ لعنت بولنا اچھا نہیں لگتا مجھے، لیکن حدیث میں ایسے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پہ لعنت ہے۔ اب آپ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، آج صبح بھی میں نے پتہ نہیں کہاں سنا کیا سنا، آئی ڈونٹ نو، لیکن کیا دیکھا کہ ایک سسٹر ہے کوئی ہے، وہ نا نعت پڑھ رہی تھی اور اس نعت میں بار بار لفظ محمد آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بھی میں کوٹ کر رہی ہوں تو مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پڑے گا نا، اور آپ جا کر آج اس سوچ کے ساتھ کئی ایسی نعتیں جس میں ڈائریکٹ نام محمد آتا ہے، دیکھیے رسول اللہ آئے تو کوئی بات نہیں، نبی اللہ آ جائے تو اٹس فائن، جہاں بھی آپ کا نام محمد یا احمد آئے گا نا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ نعت میں بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے پاس دروش، کیونکہ ٹون ہوتی ہے نا، ایک ٹیون ہوتی ہے، تو کبھی بھی ایسی کوئی نعت جس میں لفظ محمد ہو تو پھر آپ پڑھیں اس کو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں آپ کے سامنے، اور یہ صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ اس چیز کو ہم صرف ان موقعوں پہ رکھیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب کسی سے بھی محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آپ یہ بتائیے کہ اب تقریباً ہم نے 8-10 موقع دیکھے اور بھی ہیں، لیکن میں نے آج آپ کے لیے اتنا ہی سوچا تھا، لیکن میرا آپ سے ایک کوشچن ہے، جس ہستی کا تذکرہ اتنے مختلف مواقع پہ دن میں ایک دن میں بندہ کرے، کیا پھر اس سے غافل رہ سکتا، اس کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ مثلا آپ دیکھیے اس کو، پھر میں تو مثال سے سمجھاتی ہوں کہ فون پہ جس سے بات کر لیں کیا سارا دن وہ باتیں نہیں گونجتی، آپ کی اپنی کسی دوست سے یا اپنی بہن سے ذرا تفصیلی بات ہو جائے فون پہ تو کیا اس کے بعد آپ کو سارا دن ان کا خیال نہیں آتا رہتا، آتا ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک امتی اتنی دفعہ دعا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پہ درود پڑھے تو پھر بار بار آپ کی طرف خیال نہ جائے، ایسا نہیں ہے نا، تو بس کرنا پھر کیا ہم نے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو یاد رکھنا ہے، اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی کا رنگ لا کر آپ جیسے بننے کی کوشش کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، دیکھیے اللہ کے نبی انسان تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے پاس کوئی فرشتہ بھیج دیتا، جیسے کہ مکہ والوں کا مطالبہ تھا، 19 پارے کا شروع ہی جا کے سن لیجئے، قال الذین لا یرجون لقاءنا، پوری سورۃ فرقان میں ایک ہی مطالبہ ہے، یہ فرشتے کیوں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کھاتے کیوں ہیں، یہ بازاروں میں کیوں گھومتے ہیں، انہوں نے شادیاں کیوں کی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اس لیے کہ تمہیں سب کو ایک رول ماڈل چاہیے تھا، اگر اللہ کے نبی فرشتے ہوتے، مثال ہے، پھر ہم ان کی عبادات کا تذکرہ پڑھتے تو ہم کیا کہتے، دیکھو نا وہ تو فرشتے ہیں، نہ ان کو کھانا نہ پینا، اب وہ عبادت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، نہ ان کو بچوں کی شادیوں کے غم، نہ انہوں نے گھر بنانے، نہ کچھ، پھر تو ہمارے پاس حجت تھی، اللہ نے انسانوں میں ایک انسان نبی بنا کر بھیجا، کیوں کہ ہم اس کو فالو کریں، تو میرا خیال ہے اللہ کے نبی کی محبت کا سب سے بڑا اظہار کیا ہے، کہ ہم ان جیسے بننے کی کوشش کریں۔ کوئی بات کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں تو کلیئر ہے، جزاک اللہ خیر سسٹر نگینا جی،
میں ایک سوال پوچھنا تھا،
اچھا سا پوچھئے گا، جی ضرور پوچھیں،
اچھا سے نکاح کے حوالے سے،
جی ضرور،
میری بیٹی میں سے بات کر رہی تھی، تھوڑی سی ڈسکس کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں نا آپ کے سامنے اس طرح سے پوچھوں گی، اگر فار ایگزامپل نکاح ہو جاتا ہے لڑکی لڑکے کا اور ڈیسائڈ ہو جاتا ہے کہ سال بعد 6 بعد شادی ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ ملا جائے، گھوما جائے، تو آیا یہ بات درست ہے یا کیونکہ اس کا بھی پوائنٹ صحیح ہے کہ اگر اللہ نے اجازت دے دی ہے تو پھر میں نے کہا روکنے کی کیا ضرورت ہے؟
بہت اچھا سوال ہے اور فی زمانہ بڑا اہم بھی ہے، सवाल आप सब तक पहुंच गया होगा, मे भी ऑनलाइन वालों ने भी सुन लिया हो, कि निकाह होने के बाद लड़की लड़के के आपस में मिलने या घुलने मिलने की क्या शरायत है ना। देखिए, असल शादी निकाह है, ठीक है। हम कहते हैं शादी क्या है, मेहंदी, उबटन, बरात, वलीमा, पहला फेरा, दूसरा फेरा, कहीं कई मरहलों के बाद हमारी शादियां जो है वो पूरी होती है ना। असल चीज़ निकाह थी, ठीक है। निकाह होता है, अल्लाह के नबी के दौर में शादी कल्चर नहीं था, कोई शादी पे किसी को बुलाता नहीं था, तो लोग माइंड नहीं करते थे। अब ये आपने बात छेड़ी है तो अब सुने, ऐसे ही है ना। आज हमारी ज़िंदगी का मकसद शादियां करना कराना, और हमारी मसरूफियत का एक बड़ा हिस्सा शादी बन गया। इज़ इट ट्रू और रॉन्ग, फॉल्स, सच है कि झूठ है। आप देखिए कि इतनी एलेबोरेटेड मैरिजेस, 6-6 महीने से तैयारियां, फिर भी आखिरी दिन हॉल रहे, ठीक है। अब आप देखिए कि वो एक अलग चीज़ है, शादियों को भी सुन्नत में रंगना चाहिए। मेरा ले इसी रबिया लवल में एक मौजू ये भी रख लेना चाहिए। अब देखिए कि निकाह है, निकाह जिसका हो गया उसकी शादी हो गई, फ़र्क सिर्फ एक है, बहुत गौर से समझिएगा। निकाह के बाद रुख्सती जिसको आप बोलते हैं, इसको छुपा नहीं सकते। मतलब अगर लड़की लड़का है, पर्दा नहीं है, लड़की उस लड़के के साथ बात करती है बैठती, कोई गुनाह नहीं है, हरज नहीं। लेकिन अगर वो एज अ हस्बैंड वाइफ हैं, रिलेशन वही बन जाता है जो शादी के बाद होता है, तो ये छुप के नहीं हो सकता। वजह, कुरान में अल्लाह ने हर हुक्म खोला है। दूसरे पारे का आप खोल लीजिए आखिरी हिस्सा, तलाक, इद्दत, रजात, हक महर के मसाइल है, उसमें इतना क्लियर कट इशू है। निकाह हुआ लेकिन रुख्सती नहीं हुई, फिर तलाक हो गई तो क्या अहकाम आता है। खुदा ना खास्ता, देखिए अल्लाह किसी के साथ ऐसा हो ना, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है ना, लड़की लड़के का निकाह हुआ और रुख्सती से पहले लड़का फौत हो गया, तब लड़की बेवा हो गई ना, अब क्या हुक्म है? फ़र्क पता लगे, किससे पूछेंगे उस वक्त? अगर सिर्फ निकाह है, बिल्कुल फ़र्क है, हक महर फ़र्क, इद्दत फ़र्क, आगे से उसका दूसरी निकाह करने का फ़र्क है तरीका, ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर वो एज अ हस्बैंड वाइफ साथ रहे, ख़ास ताल्लुक़ कायम हुआ, तो तल हुक्म बिल्कुल बदल जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है, मेरा हले बात वाजह है। अगर लड़की लड़का साथ रहते हैं तो दे कैंट हाइड दिस, और मेरा नहीं ख्याल कि माँ बाप को इतना जुल्म करना चाहिए। अब ये भी एक कल्चर हो गया। देखिए, माजरत के साथ, मैं आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं जानती, लेकिन जो मैं इस वक्त देख रही हूँ, पहले शुरू में कुछ चक्कर चला था कि चले निकाह कर दें, आसानी हो जाएगी। मैं अब समझती हूँ कि निकाह करना अब एक और नया मसला बन गया, एक फंक्शन बढ़ गया, एक खाना और बढ़ गया, एक जोड़ा दुल्हन का और बढ़ गया, दुल्हा की और चीज़ें बढ़ गई, रिश्तेदारों का। एक दफ़ा अगर पाकिस्तान में जाके आपने निकाह करना है तो एक टिकट, PIA को बहुत फ़ायदा है हमारी इस रस्म से, मुझे लोगों से ही पता चलता है। सिर्फ एक निकाह करते हैं, मिलता क्या उसके बाद? वो जब यकीन करेंगे निकाह के इतने सारे अहतमाम के बाद लड़का बुद्धुओं की तरह घर जा रहा होता है और लड़की बेचारी बेवकूफ़ बन के घर रह जाती है, क्या मिला? नहीं समझे आप? आप किसी के आप भूखा है, खाना रखें उसके सामने और कहना खाना कोई नहीं, ये तो जुल्म है। देखिए बात खुल जाएगी ना, आप समझ रहे हैं, ये तो और किसी का रोज़ा लंबा करने वाली बातें हैं। आप किसी को भी, आप देखिए सिंपल रखिए, मेक इट सिंपल। मैं किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा चौ करने, मैंने कहा चौ होने के 4-5 साल बाद कर लेंगे, और हमारे सारे चौ ख़त्म भी 1 साल में हो जाते हैं। देखिए याद रखिए, जिंदगी सारी जिंदगी के चौ का नाम है। अक्सर लोग कहते हैं नई नई शादी है, लाड के दिन है, चौ के दिन है। मैं से एक बुजुर्ग को जानती हूँ, वो हमेशा ये कहते थे चौ वो जो सारी ज़िंदगी क्यों, ठीक। तो हमें शादियों को आसान करना है, आज ये भी एक नियत करके उठें। अल्लाह के नबी सल्लम ने जितनी बच्चियाँ ब्याहीं, अपनी शादियाँ हुई सहाबा के, फिर तो ना मदीना में कोई काम होता, ना मस्जिद नबी बनती, ना तालीम तदरीस होती, असहाबे सुफा को रोज़ छुट्टी मिलती, और कोई जंग ना होती, और कोई मुआहदे ना होते। आज उसकी शादी, आज उसकी शादी, आज उसके घर दावत, और गिले और शिकवे। अब्दुलरहमान बिन औफ इतने अमीर साहबी थे, पहले जा हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो कुछ भी नहीं, सब चला गया, गले के कपड़े भी उतरवा लिए घर वालों ने, मुहावरतन कह लें। लेकिन चंद महीने में अल्लाह ने उनको दोबारा दे दिया सब कुछ, अल्लाह तो उससे भी ज़्यादा देता है। तो जब अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई तो वहाँ उस दौर में शादी के बाद एक रंग लगा लेते थे, जैसे एक ज़ाफरान टाइप के कोई निशानी एक होती थी कि ये मैरिड और नहीं है। तो आपने देखी तो आपने कहा अब्दुलरहमान ये रंग कैसा, कहा लगे ना भाई ये एक दो दिन पहले शादी कर ली। अच्छा हम होते हमारे बगैर हमें बुलाया ही नहीं, सबसे ज़्यादा हमारा गिला क्या होता है, हमें नहीं बुलाया। अच्छा दर्स में बुलाएं तो गिला, डिस्टर्ब बहुत करते हैं, तंग बड़ा करते हैं, ये बार बार दीन की महफिल से जाते हैं, और कोई एक से दूसरी बार कह दे आया करे ना इधर क्लास होती, कहते मज़े करते हैं। अब मैं नौश ना बोलूँ तो मज़े नहीं आना गलत वो भी है, लेकिन आप देखिए कि शादी पे आप ना बुलाएं तो जाएंगे किधर, लोग कहते हैं अच्छा जी अब देखते हैं क्या होता है। और हम शादियों में अमूमन किन को बुलाते हैं, जो हमें बुलाते हैं, फिर हम क्या देते हैं, जो वो देते हैं। और एक बार दफ़ा शादियाँ क्या घरों में लड़ाई का जरिया नहीं बनती, जाहिर है हर शादी पे जाएगी बीवी, चार बच्चे हैं, हर हफ्ते शादी, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं इर्द गिर्द जो भी हालात होंगे, तो जाहिर है अपने कपड़े बच्चों के कपड़े, फिर उससे भी बड़ा गम देना क्या, और कोई छोटी मोटी भी नहीं चीज़ देनी, देनी भी बड़ी है, और जो वो आज से 10 साल पहले दे गए थे अब हमने बदल के उसको कुछ देना, ये आपके चेहरों से पता चल रहा है कि, लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ, ये ना सोचिए कि आपकी बातें मुझे किसी ने बताई। शादी हदीस में आता है शादियों को आसान करो, सबसे बाबरकत बीवी अपने मर्द के लिए आपको पता कौन है, जिसका हसूल आसान है। सहाबा का दौर इतना प्यारा दौर था कि राह चलता शख्स, अब एक जवान मर्द है उसको तलब है, फितरत का तकाजा है, क्या करे, नया नया इस्लाम था, किसी के माँ बाप नहीं थे अभी मुस्लिम, कुछ नहीं, हमारा तो एक पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है ना लड़की देखने से और हाँ करने तक, और 8-10 मरहलों में शादी होती है, फिर एक जिहाद पूरा होता है शादी का। उस दौर में क्या होता था, एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, अल्लाह के नबी निकाह की हाजत है। अब आप देखिए वक्त का इमाम, नबी, रसूल, जो भी आप नबी को टाइटल दीजिए, एक यंग लड़का इतनी जुरत रखता है कि उसके पास आके कहता है कि अल्लाह के नबी मेरा निकाह करा दें। कहा अच्छा, अल्लाह का हुक्म देखिए, बेटी वालों ने भी कहा होता था आपको, अल्लाह के नबी बेटी जवान है, कोई अगर लड़का होगा नज़र में तो बताइएगा। और एक शख्स आता है अल्लाह के नबी के पास, उसका नाम है जलबीब, बाज़ जलबैब पढ़ते हैं लेकिन जलबीब लफ्ज़ मुझे मोर एक्यूरेट लगा जो भी मैंने देखा। अल्लाह के नबी के पास आया, कहा कि आपके शहर में नया आया, और वो हबशी था, सियाह फाम ब्लैक, और स्ट्रेंजर था, और था बाहर से तो वीज़ा भी नहीं होगा, इमिग्रेंट था। कहा अल्लाह के नबी निकाह की हाजत है। कहा अच्छा सोचा होगा, वो फलां घर है कुरैशी है, उधर चले जाओ, जाके उनके बाप जो भी लड़की का है उसको पैगाम दो, कहना उसकी उनकी बेटी है तो कहना कि मैं आपकी बेटी का पैगाम लेकर आया और मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा। अब चला गया वो लड़का, इतना आसान था निकाह, उसने जाकर जब बैठ के बात अपना मदा दिया, अब मां बाप सोच में पड़ गए, करें तो क्या, देखें तो क्या देखें। नंबर एक, कुरैशी नहीं है, ख़ानदान नहीं, यानी मतलब दूसरे लफ्ज़ों में गुजर नहीं है, और दूसरी बात है ये खारियाँ से नहीं मिल रहता, जेलम से नहीं है, गुजरात से नहीं है, हमारे यही इशू है ना, छोटे छोटे हैं, प्यारे प्यारे हैं, कोई बुरे नहीं है, इसलिए मैंने नाम भी ले दिया। अब आप देखिए कुरैशी नहीं था, दूसरी बात है गरीब था, तीसरी बात है काला था, चौथी बात ये है कि उस मुल्क का रहने वाला नहीं, क्या देखें। अब माँ बाप सोच में पड़ गए, अब वो इतने बड़े घर नहीं थे, और वैसे भी लड़कियाँ ऐसे मौक़ों में अंदर से देख ही रही होती हैं। लड़की के कान में आवाज़ आ गई, उसने कहा कि अब्बा, जो भी पूछा होगा बाप ने या जो भी इसको कहानी समझे, लेकिन उसने कहा कि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इस मर्द को मेरे लिए भेजा है तो कुछ सोच के दिया होगा, ये कुरैशी नहीं है ना लड़का, तो जिसने भेजा वो तो कुरैशी है ना, और ये खूबसूरत नहीं है तो जिसने भेजा वो तो बदरे मुनीर है, और ये गरीब है तो वो तो बादशाह है, आप मेरा निकाह कर दें। अब और क्या चाहिए था, ठीक है माँ बाप ने उसका निकाह कर दिया। देखिए अल्लाह का हुक्म, पढ़ के देखें इनका वाक्या, मैं कहती हूँ आज के दौर के लिए एक रोल मॉडल वाक्या। अल्लाह ने उस शख्स को इतना कुछ नवाजा, चंद दिन में मदीना का अमीर शख्स बन गया, दौलत और मर्द के पास तो हुसन कौन पूछता है, मर्द की कभी शक्ल देखी किसी ने, उसकी तो जेब भी देखते हैं लोग हैं, और मियाँ बीवी के दिल में अल्लाह ने इतनी मोहब्बत डाली। देखिए सच्चे रिश्तों में प्यार होता है, मर्द की भी नज़रें पाक हैं, बीवी की भी पाक है, और सच्चा दीन ले आए आपके हस्बैंड को आपसे वो मोहब्बत होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। खैर क्यूपिड कपल इंग्लिश में कहते हैं उसको, जिसको उर्दू में हम कहते हैं हंसों का जोड़ा, उसका नाम पड़ गया, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। कितनी मुश्किल थी शादी, देख लीजिए। और इसी तरह एक शख्स आया, ऐसे ही मौका था, कहा अच्छा फलां औरत है उधर पैगाम भेजता हूँ, पूछा उस औरत से फलां है उधर उस तरह उनके घर का, ठीक है। इसको पूछे शादी करोगे तो कोई हक महर में देने को कुछ है, कहा इस वक्त तो कुछ नहीं, कहा जाओ घर जाओ देखो कुछ है। घर गया वापस आ गया, कहा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हक महर शर्त है, कहा कुछ भी नहीं। कहा जब कुछ भी नहीं, कोई लोहे की अंगूठी मिली, कहा वो भी नहीं है, तो कहा फिर तेरा निकाह कैसे हो सकता है, तू इतना गरीब है तो एक औरत का खर्चा कैसे चलाएगा, ये भी एक इशू है। इस्लाम में औरत खर्च नहीं लेकर आती, वो अपने कुर्सियाँ मेज़ और बेड और खाने के बर्तन साथ नहीं लाती, और मियाँ साहब उस बेड पे नहीं सोते जो ससुराल से आया है, ये तो बड़ी मर्द की मर्दानगी के ख़िलाफ़ है, वहाँ मर्द कमाता। आपने कहा कि नहीं तू अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो मायूस होकर जाने लगा, तो पीछे से आपने आवाज़ दी माँ जमा का मिनल कुरान, ऐ सहाबी तुझे कुरान कितना आता है, कहा फुलां 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 सूरत आती है, कहा ठहर दे रुक जा। उस औरत के घर पैगाम भिजवाया, क्या तू इन सूरतों के हक महर के बदले में इससे निकाह पे राजी है। अब इस पे बड़ी बहसें हैं उलमा ने कि ये सूरतों का हक महर क्या है, बाद में किसी ने ये तक यहाँ कहा कि ये सिखाने की जो मुआवजा या कोई तनख्वाह या कोई फीस होगी ना, इतने पे भी तू राजी है। वो औरतें भी सब्र शुक्र आ ली थी, उसने कहा मैं राजी हूँ, आपने उनका निकाह पढ़ा दिया। कभी आप हजरत फातिमा का निकाह तो पढ़ें, अल्लाह अकबर, बाप ने निकाह पढ़ाया। हजरत अली जो कह लें कि भाई भी थे और आपके घर पे पले भी हुए थे, कभी पढ़ें। यदि बात लंबी होती जा रही है, मगर मुझे पता है शादी की बातों में तो मज़ा ही बड़ा आता है, लेकिन यकीन करें हजरत अली और फातिमा का निकाह, शादी पूरी पढ़ के देखें आप हैरान हो जाएंगे। आज कितनी बेटी, और हम इतने अहतमाम के बाद भी क्या खुश हैं। याद रखिए अल्लाह दिलों में मोहब्बत डालता है। हज़रत आयशा और अल्लाह के नबी की एज डिफरेंस तो देखिए। और मैं कहती हूँ अगर आज किसी बेटी को दुआ देनी है तो ये दुआ दें कि अल्लाह आप में वो प्यार डाले जो नबी सल्लम और हज़रत आयशा में था। ये ऐसी प्यारी दुआ है, मैं तो जिसको भी दे सकूँ मैं यही देती हूँ, और वाकई वो देखने में हों भी ऐसे कि उनको ये दुआ दी जाए। सच्चा रिश्ता लाइए, वल्लाह ही सच ले आए, दिलों का मालिक अल्लाह है। आज हमारे पास वक्त क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं अल्लाह के नबी का दिया हुआ ये तोहफा पढ़ते, कुरान की टाइम नहीं है। हमने क्या पढ़ लिया, कुरान समझ गए, तर्जमा आ गया, इसका हल्की फुल्की वजाहत डे टू डे लाइफ में समझ आती है। कहीं राह चलते कुरान की कोई आयत कान में पड़े तो क्या करेंगे, कितना कुछ समझ आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन तरीके से अमल अल्लाह बना दे। मेरे लिए काफ़ी है, फिर आप नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, ठीक है आ जाएंगे, हाँ जब 1 साल के बाद दर्स होगा। तो देखिए आप, मैं आप सबको एक मोहब्बत भरी दावत दूंगी, माशाल्लाह सिस्टर नगीना, और मुझे किसी ने कहा आज आपकी फेवरेट स्टूडेंट के घर पे दर्स है, तो मैंने कहा आप तो सारे मेरे फेवरेट हैं, वल्लाह ही जो कुरान पढ़ता है मुझे फेवरेट, मेरा फेवरेट बन जाता है। ये यहाँ से जाती हैं रोज़, आपको इन्होंने शुरू में कुछ बताया तारुफ कराया, तो आप जो अपने लिए पसंद करती हैं अपनी दोस्तों को मेरे सामने भी कहें, आप इन अपनी बहनों को आपको एक पैगाम दीजिए। और आज अपनी दोस्तों को देखकर जो आपके चेहरे पे चमक है ये नहीं है, आप इमेजिन करें ये सारी दोस्तें आपके साथ क्लास में बैठी हों, मेकअप किया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सब के चेहरों को हंसता मुस्कुराता रखे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह क्लासेस होती हैं, एक दफ़ा आकर इस मज़े को चखिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिकोबायन पे जो क्लास हो रही है, तो कल भी है, मंडे से फ्राइडे वो होती है, आप जब जिस दिन मर्ज़ी आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा 18th पारा भी शुरू हो रहा है, और अगले वीक्स जो इसी फ्राइडे से बल्कि जो आएगा इंशाल्लाह सूरत नूर भी शुरू होगी। सूरत नूर वो सूरत है कि जो ज़िंदगी में रोशनी ले आती है, बस इतना ही कह देती हूँ, तो उसको भी अटेंड कीजिए। कोई उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी कोर्स में आने की, जैसे यहाँ का मैं इसलिए बता रही हूँ कि नॉर्वे का ट्रेंड आपको पता है कि कोर्स वही लोग करते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। कुरान कोर्सेज की कोई भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी खुशी, आप रिक्वायर करना चाहते हैं, आप सबक याद करते हैं, आप तर्जुमा सुनाते हैं, टेस्ट देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उधर आने के, बैठ के, सुनने के, पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 2 घंटे आ जाएं, 11 से 1 बजे के अंदर ही इर्द गिर्द ही घूमता है सब कुछ, तफसीर सुने, उठ के चले जाएं। आपको एक सवाल का जवाब नहीं देना, आप मत दें, आपको नहीं लिखना, आप नहीं लिखें, आएँ बैठें सुने। और एक दिन आए हैं, 2 दिन नहीं आ सकते, कोई नहीं पूछता आपसे। जी रुफिया जी,
मैं भी इसी में ये कहना चाहूँगी कि मैंने चूंकि किया हुआ था ये कोर्स, इसलिए जब मुझे पता चला कि नगीना कर रही हैं तो मैंने कहा था बहुत खुशकिस्मत है, इसलिए कि जब आप कर लेते हैं दफा, इसमें दाखिल हो जाते हैं, तो फिर एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी बेकार गुजारी थी। और मैं नगीना से अक्सर यही बात कहती हूँ कि बहुत अफसोस होता है कि ये चीज़ें, और हमारी शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारी नस्लों के पास ये है, चांस है कि ये लोग कर सकते हैं अभी। और मेरी तो हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए तो है कि ये लोग बहुत जल्दी जल्दी, जितना भी जल्दी हो सके करें। और मैं हमें हमेशा यही कहती हूँ नगीना को कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि अभी भी आपने कर लिया।
अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसके लिए एक जुमला बोलती हूँ अक्सर, आपके लिए भी बोलती हूँ कि ये क्या है, ये उसको पता चलता है जो आता है, लेकिन जो छोड़ता है उसको ये बात नहीं पता चलती। ये दौलत ऐसी है कि इसका कोई लफ्ज़ों में कोई मुकाबला ही नहीं। और मैं सोचती हूँ कितनी महरूम ज़िंदगी है जो बग़ैर कुरान को इस तरह पढ़ के समझे दुनिया से चले गए। ऐसी लगता है जैसे कोई सारी ज़िंदगी फीकी चाय पीता रहे और उसने मीठी चाय का टेस्ट ही ना लिया हो, या किसी ने कभी आम ही ना खाए हो। वो भी कुछ ज़िंदगी है जिसने आम ही नहीं खाए। कुरान को समझना अपनी जगह एक बहुत खूबसूरत तजुर्बा है। तो बहरहाल आप जहाँ कहीं और जाते हैं तो फिर आप तो पहले से ही जानते होंगे ये बातें, लेकिन कहीं भी जाइए, किसी से भी सीखें, लेकिन उस बात को ज़रूर लें कि मैंने एक दफ़ा इस कुरान को इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। ठीक है, और कोई बात आप थोड़ा सा बच्चों का कुछ बता दें जो वीकेंड पे होता है।
इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि मेरे जहन में एक बात ये आई है मसल के बारे में कि पूरे कुरान पाक में अगर हम देखें तो सारे अंबिया का जिक्र हुआ है, यानी कि हज़रत ईसा का, हज़रत मूसा का, हज़रत इब्राहिम, लेकिन कहीं भी हमें ये नहीं मिलता कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कह के पुकारा। पूरे कुरान पाक में आप देख लें कि या यूहन्ना बी यू, यानी कि नाम नहीं ले के पुकारा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के हाँ उनका क्या मुकाम है, और फिर हमारे सामने तो उनका और ही मुकाम है। तो मुझे यही वो सोच सोच के ना, तो मेरे दिल में ऐसे हो रहा था ना कि इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी को, अल्लाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हमें अगर उनके साथ मोहब्बत हो तो हम उनको कैसे फिर इस तरह पुकार सकते हैं कि उनका नाम लेके। तो ये एक मोहब्बत की बात होती है, एक अकीदत की बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ लेते हैं या जो जिनको पता होता है वो तो उनको तो यानी कि होता है कि कैसे हमें उनके साथ किस तरह मोहब्बत से उनका नाम लेना और किस तरह उनसे बात करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उधर ही जाती हूँ जिसमें नगीना जी जाती है कोर्स में, उधर ही नूरुल कुरान। तो हमारी सुबह भी होती हैं क्लासेस, शाम को भी होती हैं, शाम को बच्चों की होती हैं उर्दू की, अरबी की, और लोडा को होती हैं 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। उसमें यह है कि लड़कियों की भी अलग से होती हैं, छोटे बच्चों की अलग से क्लासेस होती हैं, और उसमें नुश्क में दिया जाता है। आजकल हम जो क्लास 10वीं पा रहे हैं लड़कियों को 10 से लेके तकरीबन आगे तक, यानी कि 15-16 साल की जो बच्चियाँ होती हैं उनका अलग से सेशन होता है, दूसरे छोटे बच्चों का अलग से होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतें तो बहुत ज़्यादा है, बस अल्लाह ताला हमें लेने वाला बनाए इससे, और अल्लाह ताला हमें इससे इसके साथ खालिस कर दे।
आमीन।
तो किसी भी आप जगह पे शाम को भी क्लासेस होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अगर
इधर भी जो एक करीब है वो,
हाँ जी, इधर हलमलिया में हो रही है क्लास, जी हलमलिया में होती है, और अगर आप चाहें तो इधर भी क्लास शुरू हो सकती है। बस ये है कि बंदे में तड़प होनी चाहिए, बंदे में शौक होना चाहिए सीखने का।
ये कौन सी वाली नवासे वाली? भाई सॉरी, आप हमें बताएं, हमसे बड़ी नाराज है। अल्लाह अल्लाह ताला आपके बच्चे को आपके लिए बेहतरीन बनाए, बस अम्मी को आपने छुट्टी नहीं करानी बच्चे के लिए। चलिए जज़ाकअल्लाह खैर जी, शुक्रिया। होल मलिया की क्लास का पूछ रहे हैं आप सिस्टर्स, एक छोटा सा अगर काम करें, अगर आप इजाज़त दें तो हम सिस्टर इनसे ही ले लेते हैं, नगीना से, आप सबके फ़ोन नंबर तो होंगे ही ना, और उसमें यह कि व्हाट्सएप पे हम डिफरेंट ग्रुप्स इस तरह से बनाते हैं कि आपको तरतीब के साथ कुछ ऑडियोज़ भेजी जाती हैं, ये नहीं कि हर वक्त मैसेज भेजें, उसका स्केड्यूल होता है जैसे क्लासरूम स्टाइल होता है, तो उसमें आपको डालते हैं और उस ग्रुप में फिर आपको ये जो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देते हैं। दूसरा, आप होलमलिया का पूछ रही हैं कहाँ हैं, तो एंड पे इंशाल्लाह बाद में आपके उन लोगों से बात करा देते हैं, तो वो किधर किस सिस्टर के घर में हो रही हैं, कहाँ होती है, तो वो आपको बताएंगे। तो उससे ये फ़ायदा है कि आप इन टच भी रहेंगे, कोई नई चीज़ होती है तो आप तक इंशाल्लाह उसका मैसेज आएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ आप जी, कुछ कहें आपकी अम्मी के बारे में।
मामा के बारे में
हाँ
मम्मा से दोस्ती नहीं
दोस्ती है।
तो दूसरी बेटी किधर है आपकी, जो नुसरत की बहू?
मरियम।
अच्छा, इधर ही है, ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह। चलिए ठीक है फिर,
नमाज की भी तुम तलकीन दे रहे, ये लोग बहुत सोचते हैं ये सब बच्चे, उनको मैं बोलती हूँ नमाज
मेरे हाल अब मुझे उठना चाहिए।
नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इतना बड़ा ये वो अहम हुआ तो कहते हैं मम्मा जब दिल चाहता है ना प्रेस नहीं करना चाहिए, तो मैं तो आग लगे दिन को गिन नहीं चाहता।
देखिए मैंने तो आपको ऐसे बात करना नहीं सिखाया, ये आप किससे सीखी हैं? प्यार से बताए ना। देखिए आप कहते इनका सवाल यह है कि नमाज नहीं पढ़ते, अगर बच्चे नमाज क्यों पढ़ते हैं, अल्लाह को शुक्रिया बोलते हैं। आपको कोई ग्लास पानी का दे आप क्या कहते हैं? थक के ठक थूजन थक। आपको कोई एक एक वक्त का खाना खिला दे तो आप कितना शुक्रिया बोलते हैं। तो नमाज अल्लाह ताला से प्यार का इजहार है, जब अल्लाह से मोहब्बत होती है ना तो फिर इजहार भी आता है, ठीक है? तो आप अल्लाह का प्यार ले आएं, और देखिए नमाज अगर मुश्किल है तो बाकी चीज़ें तो फिर बहुत ही बड़ी है ना, इसके लिए इन बहुत बहुत कुछ है जो आपसे शेयर किया जा सकता है। एक छोटी सी बात कर देती हूँ, शायद मेरी बात किसी के दिल में आ जाए। आप देखिए कि किसका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है ना, किसने तरीका सिखाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नमाज कहाँ पे जाकर फ़र्ज हुई? आसमान पे। पूरी शरीयत ज़मीन पे, और नमाज के लिए अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई, ऐसे ही है ना। फिर आप देखिए कि नमाज जब एक इंसान पढ़ता है उस वक़्त उसका अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ जुड़ता है वो आम तौर पे वो हालात उस तरीके से नहीं बनता ना, तो नमाज छोड़ना असल में अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी की बात है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इसको मैनेज कर लें। दुआ करें, आप में से जो भी सिस्टर इसमें कमी कोताही का शिकार हैं दुआ करें कि रब्बी जालनी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, अरबी में नहीं आती उर्दू में मांग लें, अल्लाह मुझे अपना नमाजी बना। क्योंकि देखिए किसी ने बात कही कि जब अल्लाह बंदे से नाराज़ होता है तो ये रोटी पानी नहीं छीनता, अल्लाह ताला नमाजों की तौफीक छीन लेता। तो हम तो बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं माशाल्लाह, किसी बच्चे को भी कुछ हो तो शुक्रिया बोलते हैं, तो अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है, और अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा तो हमारा ही है ना। तो इंशाल्लाह इसका सोर्स भी यह है कि जितना हम अल्लाह की बातें सुनते हैं उतना हमारा दिल उसके लिए खुलता है। अपने आप को सजा दें, नमाज नहीं पढ़ूंगी तो रोज़ा रखूंगी, फजर पे नहीं उठी तो मेरा रोज़ा होगा, और अगर मैंने जोहर छोड़ दी है नहीं पढ़ी तो फिर मैं दोपहर का खाना नहीं खा सकती। और अगर आप किसी दोस्त में बाहर किसी महफिल में मिसाल है किसी की वजह से छोड़ती हैं तो मैंने अब इससे अगला फंक्शन आएगा तो मैंने नहीं आना उधर, खुद को सजा दे दे कि बंदा ठीक हो जाता है, ठीक है? चलिए जजाक अल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब इलैना इन्नक अंत तवाब रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा, या अल्लाह हमें अपना बना ले, या अल्लाह हमारे दिलों को बदल दे, या अल्लाह हमें नबी सल्लम से सच्ची मोहब्बत पैदा कर दे, या अल्लाह हमें आपके तरीक़े ज़िंदगी पे चलने वाला बना दे, या अल्लाह हमें जितने भी मौाक़े हैं इन सब पे दुरूद शरीफ़ मोहब्बत के साथ पढ़ने वाला बना दे, और या अल्लाह हर लफ्ज़ में हम आपका क़ुर्ब और आपकी मोहब्बत को महसूस करें। जो भी साथी हैं इनकी जो ख्वाहिशात है अपनी रहमत से पूरी फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत और आफ़ियत दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जो नमाज से दूर हैं उनको 5 वक्त का पक्का नमाजी बना। یا اللہ جو نمازوں کی روح سے دور ہے ان کو نماز کی روح عطا فرما، یا اللہ اس گھر پہ اپنی خاص رحمت فرما، ان کی اس کوشش کو قبول فرما، یا اللہ ان کے شوہر کو، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو یا اللہ ان کے سب گھر والوں کو نمازی بنا دے، اور یا اللہ جو بھی دلوں میں خواہش رکھے ہوئے لوگ لیکن کہہ نہیں پا رہے، یا اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہمارے شوہروں پہ اپنی رحمت فرما، ان کے گھر والوں پہ اپنا رحم فرما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو گھروں سے بھی سن رہے ہیں ان سب کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما، جو بات میں سنیں گے یا اللہ ان پہ بھی اپنا رحم فرما، یا اللہ جو تیرے رستوں میں لگا ہوا ہے اس پیغام کو عام کرنے، یا اللہ تو ان کے لیے بھی ان کی زندگیوں میں بھی آسانی فرما، یا اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی دے، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور یا اللہ شیطان کے پھندوں سے ہم سب کو بچا دے، سبحانک اللہم وبحمدک آمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹرز، آپ سب کو میں ٹائٹل دوں گی کہ آپ سب بڑے اچھے لسنرز ہیں، کیونکہ جو اچھے طریقے سے سنتا ہے تو بات کرنے کا مزہ آتا ہے، اور میں نے واقعی آپ سب سے بات کر کے انجوائے کیا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لے جی اب اس کو احتیاط سے۔